നമോ അരിഹന്താണം, നമോ സിദ്ധാണം, നമോ ആര്യാണം, നമോ വജ്രായാണം, നമോ ലോയേ സവ്യസാഹം, ഏസോ പഞ്ചരണമോയാറു സർവ പാപനാശനോ മംഗളാണം ച സർവേ പരമഹോരി മംഗളം. സത്താരി മംഗളം, അരിഹന്താ മംഗളം, സിദ്ധാമംഗളം, സാഹുമംഗളം, കേവലി പണത്തോരമോ മംഗളം. ചത്താരി ലോകുത്തമ, അരിഹന്താ ലോകുത്തമ, സിദ്ധാ ലോകുത്തമ, സാഹു ലോകുത്തമ, കേവലി പണത്തോ ധമ്മോ ലോകുത്തമോ. ചത്താരി ശരണം പവജ്യാമി, അർഹന്തേ ശരണം പവജ്യാമി, സിദ്ധേ ശരണം പവജ്യാമി, സാഹു ശരണം പവജ്യാമി, കേവലി പണത്തം ധമ്മം ശരണം പവജ്യാമി. മോക്ഷമാർഗസ്യ നേതാരം भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं देशतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे. कर्म फिलॉसफी के संदर्भ में अपनी यहां चर्चा पिछले कई सेशन से चल रही थी और अभी एक डेढ़ घंटे पहले अपना जो सेशन था उसमें हमने डेढ़ घंटा मोहनीय कर्म के संदर्भ में, विशेषकर दर्शन मोहनीय कर्म के संदर्भ में चर्चा करते हुए केवली के अवर्णवाद की बात देखी कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, हमारे को हमारे कर्मों का ही फल मिलता है. यह जीव अपने परिणामों से सुखी दुखी होता है. बीच में कुछ ऐसी चर्चाएं भी चली कि यदि भगवान कुछ करता धरता नहीं है तो हम भगवान को नमस्कार क्यों करें, यदि भगवान कुछ देते नहीं है तो हम मंदिर क्यों आए. मंगलाचरण जो अभी हमने बोला ना दो लाइनें उमा स्वामी आचार्य का, उसमें साफ कह दिया उन्होंने, हे महावीर भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मैं आपको नमस्कार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे कुछ दे देंगे. तो क्यों कर रहे हो नमस्कार, कि वंदे सद्गुण लब्धये, आप में जो गुण है उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं. आप सोचिए, तीन लोक के नाथ, अनंत सुख के धनी, लोकालोक को जानने वाले पूर्ण सुखी, सर्वोत्कृष्ट पद पर जो बैठे हुए हैं, आप क्या मांग रहे हैं उनसे. सुबह हमने पूजन की थी और उस पूजन में शांति पाठ में दो बहुत सुंदर लाइनें बोली हमने, याद होगा आप लोगों को. तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जांचूं कहां. पढ़ी थी लाइन, शांति पाठ की लाइन है. आप जैसे दातार हमारे को मिल गए हैं, आपसे छोटा मोटा काम क्या मांगू मैं, कौन सा छोटा मोटा काम, कि ये ही थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, तकलीफ नहीं रहे, ये कोई दम नहीं है. इतने बड़े दातार हमारे को मिल गए तीन लोग के नाथ और उनसे हम ये भोगों की डिमांड करें, तो फिर क्या करता हूं. तुम सारी खे दातार पाए, काज लघु या क्यों कहा, मुझे आप सम कर ले हूं स्वामी, यही एक वांछा महा. आप जैसे दातार मिल गए हैं, कैसे दातार, जो अपने समान बना लेते हैं, जो भगवान बनाने की बात करते हो, हम उनसे कहें कि दुकान चला दो, मती मारी गई, क्या कहें बोलो. आपको पता नहीं है क्या मिल सकता है उनके पास में. भगवान के चरणों की शरण से उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम भगवान बन सकते हैं. कोई राजा गरीबों को किमित्तिक दान देता हो, किसी गरीब दरिद्री व्यक्ति के ऊपर किसी घटना से प्रसन्न होकर ये कहे मांग तू क्या मांगता है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तो जो मांगे मैं तुझे दूंगा। और वो भिखारी ये कहे महाराज मेरे पास तो ये एल्युमिनियम का कटोरा है भीख मांगने के लिए, स्टील का जला दो ना। अब बोलो वो क्या करें उसके अब आगे, हम तेरे को कह रहे हैं तू चाहे जो मांग सकता है तुझे वो मिल सकता है, आज हम इतने प्रसन्न हैं कि तू राज्य मांगे तो मिल सकता है, लेकिन इसकी बात देखो क्या मांगता है, कटोरा ही भीख मांगने के लिए। हम यहाँ कह रहे हैं तुम किन के दरबार में आए हो, तुम वीतरागियों के दरबार में आए हो, हमने उस जैन कुल में जन्म लिया है जो जैन कुल भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है, हम उस कुल में जन्मे हैं, हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं, साधारण नहीं है हम, हमने अपनी कीमत भी नहीं समझी और महावीर भगवान की कीमत भी नहीं समझी, आपने ऐसा समझ रखा है उनको शाम के भोजन की व्यवस्था हो जाए बस अपने को, अच्छा आज पार्टी में जा रहा हूँ वहाँ यदि अपने को ये चीज मिल जाए ठंडा ही मिल जाए तो मजा आ जाए, वाह रे वाह तू क्या मांगता है, तेरे को 56 भोग मिलने वाले हैं तो इतनी सी चीज मांग रहा है, हम कह रहे हैं तेरे को 3 लोक का राज्य मिलने वाला है और तू क्या मांग रहा है भगवान से, ये बहुत छोटी बुद्धि है। इसलिए उमा स्वामी आचार्य कहते हैं वंदे सदगुण लब्धे, कौन से गुण आप में, वीतरागता आप में गुण है, सर्वज्ञता आप में गुण है, केवल ज्ञान मैं वो प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए आपके चरणों की शरण में आया हूँ, भगवान के पास में कुछ मांगने के लिए नहीं आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। मैं क्या मांगू भगवान, क्या कामना रखूं आपसे, मांगने वाले अच्छे नहीं होते लोग, मांगने वाले लोगों से तो हम सब दूर भागते हैं, सच बात है, अपने लिए ही नहीं संस्था के लिए भी कोई व्यक्ति मांगता हो ना हम सोचते हैं यार इससे थोड़ा सा बच के रहो, ये फिर अभी मांगेगा फिर अभी कुछ चाहेगा, हम खुद मांगने वाले बन रहे हैं, सोचो आप मांगने वालों से बचते रहे और भगवान के पास में आकर के मांगने वाले बन गए, नहीं नहीं हम कुछ नहीं मांगते प्रभु आपसे, लेकिन देखो तो सही याचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, ये सब तो नहीं चाहिए लेकिन देखो तो सही क्या मांग लिया, तुम जैसा वंदे तदगुण लब्धे मोक्ष मार्ग से नेतारम, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, भेतारम कर्म भूभ्रताम कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम संपूर्ण लोकालोक को जानने वाले हैं, माने आप वीतरागी हैं आप सर्वज्ञ हैं आप हितोपदेशी हैं, आपकी ये गुण मुझे भा गए हैं, मुझे आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो इसलिए वंदे वंदना करता हूँ, इसलिए आते हैं मंदिर, अवर्णवाद नहीं हो, ये चर्चा हमने पिछले सेशन में की है, केवलियों का अवर्णवाद नहीं हो, श्रुत का अवर्णवाद नहीं, श्रुत माने शास्त्र, संघ का अवर्णवाद नहीं, मुनि आर्य का श्रावक श्राविका ये संघ है, चतुर्विध संघ कहलाता है, इनका अपमान नहीं करना, साधर्मियों का अपमान नहीं करना, ये साधर्मी इनका साथ आपका बहुत लंबे काल तक रहेगा, आप देखिए परिवार वालों का साथ ज्यादा लंबे समय का नहीं है, उम्र तक है, जितनी उम्र है तब तक का साथ है, उसमें क्या पता हमारी उम्र कब खत्म हो जाए और उनकी कब खत्म हो जाए, क्या पता कौन बीच रास्ते में साथ छोड़कर चला जाए, बराबर। लेकिन साधर्मियों का साथ कैसा है, साधर्मियों का साथ ऐसा है कि अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के साथ में रहेंगे, बोलो किसका साथ चाहिए आपको, जो लंबे समय तक साथ निभाए उसका साथ चाहिए या जो थोड़े दिन में साथ छोड़ के चला जाए उसका साथ चाहिए, हम तो हाथ भी पकड़ते हैं तो कहते हैं ये जन्म जन्म का साथ, सात जन्मों का साथ हम यहाँ साधर्मी के साथ की बात करते हैं क्योंकि ये मोक्ष से जाने वाले हैं। कहाँ तक साथ जाएंगे? मोक्ष तक साथ में जाएंगे साधर्मी, जो हमारे को दुख से बचाए, जो हमारे को संकटों से बचाए। परिवार जन मोह बढ़ाने वाले हैं, साधर्मी जन मोह घटाने वाले हैं, और साधर्मियों से भी बढ़कर अपना जो सधर्मी आत्म तत्व है वो मोह नचाने वाला है। अब किसका साथ चाहिए? मोही जीवों का साथ छोड़कर साधर्मियों का साथ पकड़ो तो मोह मंद होगा, और साधर्मियों के साथ में रहकर त्रिकाली ध्रुव के एक भगवान आत्मा की चर्चा करो तो मोह नष्ट होगा। इसलिए मोह के नष्ट करने के लिए साधर्मियों के साथ में बैठ करके ये तत्व चर्चा, वस्तु स्वरूप का विचार, आत्मा कौन है भैया, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये भगवान कैसे बन गए हैं, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, मैं स्वयं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ, मेरे जन्म मरण के दुखों का अभाव कैसे हो सकता है। ये भव हमारे को भव का अभाव करने के लिए मिला है भाई, ये जन्म हमारे को जन्म मरण का अभाव करने के लिए मिला है। ये जैन कुल यूं ही विषय भोगों में खाने पीने के लिए, मौज मस्ती उड़ाने के लिए नहीं मिला है, ये तो अनंत बार किया है। खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, हम तो मानव हैं, कुछ तो फर्क होना चाहिए। ये तत्व ज्ञान मिलना साधारण बात नहीं है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बहुत भाग्य से मिल गया, जिन धर्म मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया, जिन वाणी सुनने का अवसर मिल गया। मिलता नहीं भाई साहब, तरसते हैं लोग, जिन मंदिर नहीं मिलता, जिन वाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता। जिनको ये अवसर मिलता है उनके बारे में आचार्य ऐसा फरमाते हैं, भाग्यशाली है, करोड़ों की धन संपत्ति एक तरफ हो लेकिन जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं हो, ऐसे अभागा है। और जिनवाणी सुनने का अवसर मिले ऐसे भाग्यशाली है। शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं हो और शांति से बैठ करके जिनवाणी की चर्चा सुनता हो ऐसे भाग्यशाली है। रोटी की व्यवस्था तो है नहीं, आप भाग्यशाली कह रहे हो, अरे रोटियों में क्या दम है, अतिंद्रिय आनंद का स्वाद लेगा, आप क्या रोटियों की बात करते हो। अनंत काल तक अपूर्व सुख का अनुभव करेगा, अतिंद्रिय आनंद का उपभोग करेगा। आप जिस भोजन की बात करते हो, इस भोजन का तो अभाव करना है अनंत काल के लिए, इस भोजन की जरूरत ना पड़े, काम तो ऐसा करना है। पेट भरने की बात नहीं है, ये पेट तो कभी भरता ही नहीं है, भर लो पेट, भर सकते हो क्या? सुबह आकर के बैठे हम, नाश्ता करके आए थे, भर पेट, मुझे इतना कर लेना कि दोपहर में लंच की जरूरत ना पड़े, बोलो। इतना भर पेट भोजन कर लो कि शाम को भोजन की जरूरत ना पड़े, होता ही नहीं है। फूटा घड़ा जैसा है, कितना डालो इस पेट में। आपको पता है कितने लड्डू खाए हैं जन्म से आज तक, कितनी रोटियां खा गए हैं हम आज तक, ये भरा ये पेट कभी? कितने घड़े पानी के खत्म कर दिए हमने पेट में डाल डाल के, कभी खत्म तृप्ति नहीं होती। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। खूब तृप्ति प्राप्त करने की कोशिश की मैंने, इससे तृप्त हो जाऊंगा, इससे तृप्ति मिल जाएगी, इससे शांति मिलेगी, सुख की तलाश में मैं कहां कहां नहीं भटका। और हे जिनेंद्र देव, अब मैं आज आपके चरणों की शरण में आया हूँ, तो आप ये कहते हो कि तू क्यों ठोकरें खाता रहा, तो अपने में क्यों नहीं चला गया जहाँ सुख भरा था, सुख की तलाश में भटकता रहा, यही तो अपराध किया तूने, भटकने से सुख नहीं मिलता, शांति से बैठ और अपने स्वरूप को देख तो सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यदि तू सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहता है तो शांत चित्त होकर के विचार कर, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्म ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। श्रीमद जी की पंक्तियां है ना, आप लोग गुजराती में बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसलिए आप लोग बोलते हैं ना और हमारे को लगता है कि ये पास पास में जैसे हिंदी में बोल रहे, लेकिन वो आप शब्द कुछ अलग होते हैं। विचार कीजिए, शांत चित्त होकर के विचार कीजिए, वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए। मेरी भावना के अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार, ये क्या चीज है वस्तु स्वरूप का विचार? जिनवाणी के बारे में, वस्तु जीव पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का स्वरूप जानना, आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है ये जानना है बस। मैं कौन हूं और भगवान कौन है? शांत चित्त से इस बात का विचार करो, आनंद का उपभोग करो। कितना सुख का मार्ग है, कितना शांति का मार्ग है, निराकुलता का ये मार्ग है। आकुलता का जहाँ अभाव हो जाए, मिथ्या भ्रांतियां यहाँ निकल जाए, सारी की सारी तकलीफ गलतफहमी की वजह से हो रही है। अभी मुझसे कोई सज्जन पूछ रहे थे, इस तरह की बात कह रहे थे कि साहब ये बताओ हमारे को, भगवान कुछ करता धरता नहीं है तो फिर ये लोग करता धरता क्यों मानते हैं, ये कब से चालू हुई है ये परंपरा, फिर लोगों की मांगने की ये बात कब से शुरू हुई है? कब से शुरू हुई? अनादि से है, क्योंकि इसकी गलत फहमी कोई नई नहीं है, ये गलत फहमी चली आ रही है बहुत लंबे काल से। धोखे में जी रहा है, भ्रम से अपना काल बिता रहा है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। मिथ्या दर्शन माने भ्रम, तो हमने उसके बारे में गलत समझ लिया, इसका नाम मिथ्या दर्शन। अवर्णवाद है ना, हमने सूत्र क्या पढ़ा था, केवली श्रुत संघ धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। उमा स्वामी महाराज कहते हैं दर्शन मोहस्य, दर्शन मोह का आश्रव, दर्शन मोह कर्म का बंधन। मिथ्यात्म क्यों बंधा था आपको? क्योंकि आपने उनका अवर्णवाद किया था। ये अवर्णवाद क्या होता है? अवर्णवाद का मतलब क्या है? अवर्णवाद का तो मतलब समझते निंदा अपमान, यही है ना। तो केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का, देव का, इन सब का अवर्णवाद करे, अपमान करे, तो दर्शन मोहनी कर्म बनता होगा। हाँ साहब, बात तो यही है। तो हम आपसे पूछते हैं दिनेश भाई कि भगवान का अपमान, केवली श्रुत संघ धर्म इनका अपमान तो वही करता होगा ना जो मंदिर आता होगा। हमारे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, हिंदू हैं, दूसरे और लोग रहते हैं। अब वो हमारे मंदिर में ही नहीं आते तो भगवान का क्या अपमान करेंगे? वो हमारे शास्त्र को ही नहीं छूते तो जिनवाणी का अवर्णवाद क्या करेंगे? तो इसका मतलब उनको तो दर्शन मोहनी कर्म नहीं बंधता होगा। मुकुल भाई पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो तो हमारे मुनिराजों से, हमारे साधु संतों से मिलते ही नहीं है। फिर हम कहेंगे साहब हमारे साधुओं को वे गाली दे रहे हैं, साहब अपमान कर रहे हैं उनका। तो कितने भैया मेरा कुछ लेना देना नहीं, बहुत सरल है, शांत है, अपने घर में रहते हैं, दोनों टाइम भोजन करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने दुकानदारी करते हैं, परिवार को संभालते हैं। तो उनका तो कोई किसी की कोई निंदा आलोचना का कोई काम ही नहीं है। तो दर्शन मोहनी कर्म बंध रहा है या नहीं बंध रहा है? आप लोग सब एक स्वर से कह रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे कैसे बंध रहा है? अवर्णवाद हो रहा है। अरे साहब किसी का अपमान करते ही नहीं है। अरे अपमान करने को अवर्णवाद नहीं कहते हैं? क्या कहा मैंने? अपमान सूचक शब्द कहने का नाम अवर्णवाद नहीं है। अवर्णवाद, अ माने नहीं, वर्ण माने होता है रूप, वर्ण माने रूप माने स्वरूप। तो अवर्ण माने स्वरूप के विपरीत, वाद माने कहना। जिसकी वाणी वस्तु स्वरूप के विपरीत है, जो वस्तु स्वरूप के विपरीत जिसके मन में विचार चलता है, वो सब अवर्णवाद करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जैन अजैन मिथ्या। आप बताओ एक इंद्रिय जीव क्या दर्शन मोहनी कर्म बांधता होगा? किसका अपमान करता होगा? गाय भैंस किसका अपमान कर रही है? ये बाहर झाड़ खड़े हैं, ये पेड़ कि किसका अपमान कर रहे हैं? ये अपमान क्या कर रहे हैं? ये स्वरूप नहीं समझते, इसलिए दर्शन मोहनी कर्म बन रहा है। अवर्णवाद, अ माने नहीं, वर्ण माने स्वरूप, वर्ण माने रूप होता है ना, तो स्वरूप, तो अवर्ण स्वरूप से विपरीत। स्वरूप से विपरीत बात क्या होगी कि मैं शरीर हूं, मैं शर्मा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मनुष्य हूं, तुम आत्मा हो भाई। क्या उनसे कोई आत्मा के बारे में चर्चा करे? हमने कई लोग ऐसे देखे हैं, आप अपने घर में महसूस कर सकते हैं, आप अपने आप के परिणामों को देखना जरा। मैं कहता हूं, हम मंदिर आ रहे थे और हमारे घर में कोई मेहमान आए, हमने उनसे कहा चलो भैया मंदिर चलते हैं, स्वाध्याय चल रहा है वहां, हो सकता है वो जो मेहमान थे वो आप भी हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं। जवाब बतलाता हूं मैं क्या दिया उन्होंने, नहीं नहीं पंडित जी आप जाओ मंदिर, तो आप सुनाओ, हमारा मन नहीं लगता, हम यही शांति से बैठे। देखो नाराज होके नहीं कहा, बिगड़े नहीं दे, पलट के जवाब नहीं दिया, बहुत प्रेम से कहा आप जाओ, मैं यही बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ मैं आराम से शांति से, मेरे समझ में नहीं आती, आप जाकर के आओ फिर अपन गप्पे लड़ाएंगे, फिर अपन गपशप करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ वो व्यक्ति तीव्र कशाई है या मंद कशाई है? बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, गुस्सा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कशाएं बिल्कुल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तीव्र परिणाम है, आत्मा के विरोधी है। दर्शन मोहनी कर्म बांध रहा है, तीव्र दर्शन मोहनी कर्म बांध रहा है, विराधना का भाव है, आत्मा के स्वरूप को समझने का परिणाम नहीं है, अपने आप के स्वरूप को समझने की तरफ अग्रसर नहीं होता है, इसलिए विराधना है। ये क्या है दर्शन बोलो तो सही, सारा जगत जिनके बारे में ये कहता हो कि मंद कशाई है, निर्वाणी ये कहती है कि तीव्र कशाई है, चारित्र मोह। चारित्र मोह माने कषायें, क्या कैसी होती है चारित्र मोह, इसका नाम कषाय है सब। आप यदि किसी व्यक्ति को ये कहते हो शांति से हंसते मुस्कुराते हुए कह रहे हो नहीं बाप अपन तो नहीं बापन तो अपने समझ में नहीं आती, आप बैठो आप तीव्र कषाय है। जब ये बातें हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो हमारे को आश्चर्य होता है कि हम क्या समझते हैं, हमें ऐसे लगता है कि बहुत तेज गुस्सा करता हो वो तीव्र कषाई है, जो प्यार से बोलता हो वो तो तीव्र कषाई है ही नहीं। पता नहीं क्रोध आदि कषायों की व्याख्या जो कि चारित्र मोहनी के अंतर्गत की गई है उनके बारे में भी कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे को। एक व्यक्ति गुस्सा करता है वो हमारे को क्रोधी दिखता है, और एक व्यक्ति गुस्सा तो नहीं करता, अभिमान बहुत है, वो हमें कषाई नहीं लगता। एक व्यक्ति क्रोध नहीं करता लेकिन मन में मायाचार छल बहुत है, वो हमें तीव्र कषाई नहीं लग रहा। गुस्सा नहीं करता, प्यार से बात करता है, अंदर में लोभ कषाय बहुत है, वो हमें तीव्र कषाई नहीं लग रहा। कषाय केवल क्रोध ही है, मान कषाय नहीं है, मायाचार कषाय नहीं है, लोभ कषाय नहीं है, क्या आप बताओ हमारे को? हम सब कितने लोभी हैं, तीव्र लोभी हैं, लेकिन तीव्र कषाई तो नहीं समझते हैं अपने आप को। तीव्र कषाई तो वही दिखता है जो गुस्सा बहुत तेज करता हो, फिर धोखे में हम कषायों का स्वरूप ही नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ क्रोध को ही कषाय मान करके बैठे हैं। मान भी तो कषाय है भाई साहब, घमंड भी तो कषाय है, मायाचार छल कपट लोभ लालच का परिणाम ये सब कषायें हैं, लेकिन तीन कषायें तो हमारे को कषायों जैसी दिखती नहीं है, क्रोध कषाय ही कषाय जैसी दिखती है। ये तीव्र कषाय का परिणाम है राग द्वेष का परिणाम, ये तीव्र कषाय का परिणाम है जिनवाणी सुनने नहीं आने का परिणाम, सुनने के लिए नहीं आने का परिणाम, जिसको जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आता अभागा है। अरे भाव अरबों की संपत्ति है, चार दिन के लिए बकरी के पेट में जाके पैदा हो जाएगा, मैं करता फिरेगा, बोलो क्या दम है इसमें? आपको लग रहा है कि साहब बहुत पुण्यशाली है, बहुत, अरे क्या पुण्यशाली है, ये पुण्य चलेगा कितने दिन? जो व्यक्ति जिनवाणी सुन रहा है, सामने भोजन की व्यवस्था नहीं है, रोटी के लिए कोई पूछता नहीं है, तन में बीमारी दिखाई दे रही है, आप कह रहे हो अभागा है, आचार्य देव कह रहे हैं भाग्यशाली है, ऊपर जाने वाला है। जो आपको भाग्यशाली दिखाई दे रहा है उसके बारे में कह रहे हैं अधोगति होने वाली है। भाग्य किसका नाम, भाग्यशाली किसे कहें, फ्यूचर देख करके बात करते हैं मुनिराज, संत साधु तपस्वी लोग, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष फ्यूचर देखते हैं, उनको दिखता है, जैसे कहते हैं ना पूत के पग पालने में दिखते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं आप लोग, दिखते हैं, लक्षण देख करके पता लग जाता है, देखने से पता लगता है इसकी होनार कैसी है, कि कैसा निकलेगा, कि किस रास्ते पर चल रहा है। ये साधु महात्मा देख करके कहते हैं इसकी होनहार वाली है, वैसा बहुत भाग्यशाली है। ये क्या देख करके कह रहे हो, मंदिर आता है, क्या देख करके कह रहे हो, स्वाध्याय के अंदर बैठा है, भाग्यशाली है। वो लोग अभागे हैं सच में, न केवल हमारी दृष्टि में, भगवान महावीर स्वामी पार्श्वनाथ स्वामी की दृष्टि में अभागे हैं वे, जो अपने आप को नहीं पहचान पाते, उनसे बड़ा अभागा और क्या होगा, जिन्हें अपनी खबर नहीं है, जिसे अपने वैभव की खबर नहीं है, जिसे अपनी संपत्ति की खबर नहीं है, वो अभागा नहीं है तो और क्या है। अपनी संपत्ति की खबर नहीं है और दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि डालता है, दुष्ट है। दुष्ट किसे कहते हैं, दू इष्ट, दूसरा जिसको अच्छा लगता हो वो दुष्ट है, जिसका मन विषयों में रमता हो, जिसका मन भोगों में रमता हो, जिसको बाहरी विषय कषायों में आनंद आता हो, जिसको राग रंग में आनंद दिखाई देता हो, कहते हैं दुष्ट है। यह अवर्णवाद है, असली अवर्णवाद जो सब कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। आपको लगेगा हम टीवी देख रहे हैं शांति से बैठ करके, हम क्या अवर्णवाद कर रहे हैं, हम मंदिर नहीं गए, हम क्या अवर्णवाद कर रहे हैं, हमने क्या अपराध कर दिया, क्या गलती हो गई हमारी मंदिर नहीं गए तो, अवर्णवाद है। अरे वाह, ये तो बहुत मुश्किल है, आपके जान लोगे क्या हमारी के मंदिर ही बैठे रहे क्या, आज तो संडे था, चलो कोई बात नहीं, दिन भर लगा दिया हमने यहाँ, ये रोज थोड़ी ना हो सकता है, ये तो सप्ताह में एक दिन करने वाला धर्म है। और वो जो दुकान वाला है ना, वो सातों दिन करने वाला है, वो कैसा है, वो धर्म कैसा है, परिवार धर्म कैसा है, वीक में 7 डेज, दुकान वाला कैसा है, 5 डेज होगा आपके यहाँ, और ये मंदिर वाला कैसा है, सप्ताह में एक दिन, क्यों सप्ताह में एक दिन रोटी खाते हैं। देखो रोटी खाए बिना नहीं चलता हमारा, भोजन के बिना नहीं चलता, वो तो शरीर को तो रोजाना चाहिए, और आत्मा, अरे आत्मा तो मंदिर वालों की है, जैन सेंटर वालों की है, शरीर तो अपना है भाई साहब, शरीर तो हमारा है, और आत्मा, हाँ आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं, आत्मा की चर्चाएं तो ऐसी लगती है इसको, ऐसे बोलता है आत्मा फात्मा की बातें, आत्मा फात्मा बोलता है, इससे बढ़कर और क्या अवर्णवाद होगा, बोलो। भगवान भगवान की बातें नहीं, भगवान भगवान कैसे अपशब्द बोलता है, क्या बोल रहा है, इसको कुछ होश नहीं है, परमात्मा क्या कह रहे हैं, किस तरह से उनका अवर्णवाद कर रहा है, जिसको आत्मा की चर्चा नहीं तो आ रही है उसी को तो अवर्णवाद कहेंगे ना। सात तत्व से विपरीत बात कहना वो अवर्णवाद है, देव शास्त्र गुरु से विपरीत बात करना वो अवर्णवाद है, वस्तु स्वरूप के विपरीत चिंतन रखना वो अवर्णवाद है, आत्मा की शुद्ध नहीं आना वो अवर्णवाद है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल 6 द्रव्यों की समझ नहीं होना वो अवर्णवाद है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, उनको कर्ता धर्ता मानना ये अवर्णवाद है। और किसे कहें अपना अवर्णवाद, हमने का अवर्णवाद का स्वरूप ख्याल में नहीं आता कि कैसा होगा अवर्णवाद। ये बातें कहने में बहुत सरल लग सकती है, गले नहीं उतरती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है साहब। श्रद्धा के स्तर पर उतर जाए तो भगवान बनने का मार्ग शुरू हो जाता है। भगवान बनने की बात कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बातें होगी कि साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो आप तो। अरे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बहुत सरल बातें हैं। सबसे सरल है निज पद पाना। तो यहां तक कहते हैं हम कि दुनिया का कोई काम करना आसान नहीं है, क्योंकि वो आपकी नहीं चलती, उसमें उदय की चलती है, आपकी नहीं चलती। आप बाहर गए, गाड़ी में चाबी लगाई और घुमा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही, नहीं चलती आपकी, चलाओ आप कोशिश करो। 15 मिनट हो गए माता पर जाते हुए, देखते हुए क्या हो गया, पता नहीं, सही तो थी, यही तो ला करके खड़ी की थी, चाबी भी सही लगाई है, इसमें डीजल भी है, इसके अंदर फ्यूल भी है, गैस बोलते गैस है, अब ये चलती क्यों नहीं है, ये क्या हो गया। और फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम चाबी लगा करके दोबारा घुमाई तो स्टार्ट हो गई। हम किसने तो उसको रोका था और किसने उसको स्टार्ट किया, कौन रोक रहा था और किसने स्टार्ट किया। हमारी चलती नहीं है भैया, हमारी नहीं चलती। उसने उदय प्रमाण व्यवस्थाएं हैं, इसलिए दर्शन मोहनी कर्म के अंतर्गत दर्शन मोहनी कर्म के बंधन के कारणों की चर्चा करते हुए अवर्णवाद शब्द दिया है उमा स्वामी आचार्य ने, जो बहुत स्मरण रखने योग्य है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वीराधना नहीं हो हमारे माध्यम से, इसलिए सावधान रहे, हर समय सावधान रहो आप। वीराधना नहीं हो, आराधना हो। हम ये नहीं कहते आप रोजाना आए, हम ये नहीं कहते कि आप मंदिर में ही बैठे रहें, लेकिन कम से कम मंदिर आने वालों की अनुमोदना तो करो, उनकी प्रशंसा तो करो। आपको पता नहीं है ये कर्म चक्र, ये उत्कर्षण और अपकर्षण का खेल, आपको ये पता नहीं है संक्रमण क्या चीज होती है। हमारे परिणामों से अंदर में बंधे हुए कर्म एक झटके से कम हो जाते हैं, बंधे हुए कर्म कम हो जाते हैं, पहले के बांधे हुए कर्म कम हो जाते हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास में रोते हुए, वो ये कहते हैं पंडित जी हमने जीवन में बहुत पाप किए, हमने बहुत पाप किए, पता नहीं हम तो धर्म कर ही नहीं सकते, हम क्या धर्म करेंगे, हम इतने पाप किए हमने पहले। हम कहते हैं भूतकाल में जितने भी किए हैं उनका रोना बंद करो और वर्तमान में वस्तु स्वरूप के अनुसार विचार करो, और आप वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म झड़ते नजर आएंगे, पीले पत्तों की तरह, पतझड़ की जैसे झड़ जाएंगे, अपकर्षण हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, बांधा हुआ पाप पुण्य में बदल जाएगा। बोलो आप, पाप बांधा था और पुण्य में बदल गया, छोटा काम किया था और अच्छे फल में बदल गया, संक्रमण हो गया। किसकी ताकत है ये? ये वर्तमान परिणामों की ताकत है। पहचानो अपने वर्तमान परिणामों की ताकत को, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो, ऐसी योग्यता है वर्तमान परिणामों में, हो गया उसे छोड़ो। सिवा हमने बहुत निंदा की है ज्ञानियों की, कोई बात नहीं, अब प्रशंसा करो, अब अनुमोदना करो, पढ़ सको तो स्वयं पढ़ो और पढ़ नहीं सको तो पढ़ने वालों की प्रशंसा करो, स्वयं आकर के स्वाध्याय का लाभ ले सको तो बहुत अच्छी बात है, और आकर के स्वाध्याय का लाभ न ले सको तो जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करो कि बहुत भाग्यशाली हैं जो आकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ, अभागा हूँ, अवसर मिलेगा तो मैं भी करूँगा, भावना तो भाव। कर्म तो परिणामों से बनते हैं, क्रिया की अपेक्षा से परिणामों का ज्यादा फल मिलता है। ये जैन दर्शन परिणामों का फल बतलाता है, क्रिया का नहीं। हम सब क्रिया 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 में लगे हैं, भावों की तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का, फल तो परिणामों का लगता है। हम कहते हैं परिणाम सुधारो आप, धर्म करने के लिए कोई मंदिर आने से ही धर्म होता हो ऐसा नहीं है, घर बैठ करके भी पुण्य बांधा जा सकता है, पुण्य बनता है, और मंदिर आकर के भी पाप बांधते हैं लोग, मंदिर आकर के भी तेरी मेरी लड़ाई झगड़ा मन मुटाओ राज बांध रहे हो, कर्म बांध रहे हो आप, तीव्र पाप कर्म बांध रहे हो। कषाय उदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं उन तीव्र परिणामों से चारित्र मोहनी कर्म का नवीन आश्रव होता है। जो भी हमारे राग द्वेष काम क्रोध आदि के जितने भी परिणाम हैं, ये सारे के सारे परिणाम चारित्र मोहनीय कहलाता है। 25 वेद हैं चारित्र मोहनीय कर्म के, चारित्र मोहनीय कर्म के 25 वेद हैं। चार प्रकार का क्रोध, चार प्रकार की मान, चार प्रकार का माया, चार प्प्रकार का लोभ, 16 हुए। और 9 कषायें, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषायें। तो 16 और 9 25 कषायें हैं। तो 9 कषाय अलग है, वो 9 कर्म अलग है। कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स भी नहीं करना दोनों को, 9 कषायें और 9 कर्म, ठीक है ना। 9 कर्म क्या चीज है? संयोग। 9 कर्म क्या है? कॉपी, पेन, डायरी, लैपटॉप, मोबाइल, घड़े, कपड़े, बर्तन, जेवर, गहने, सब कुछ, गाड़ी बाड़ी, लाड़ी पाड़ी, सब जो कुछ भी है ना, वो सब सब क्या है? सब 9 कर्म। आप जिस चीज, जो चीज आपको पुण्य पाप कर्म के फल में मिली ना, वो सब 9 कर्म। शरीर भी 9 कर्म है, दांत भी 9 कर्म है, पाल भी 9 कर्म है, आंख नाक कान सब 9 कर्म है। कर्म के उदय से मिला है, इसलिए 9 कर्म कहलाता है। अब ये जो 9 कर्म हैं, ये अलग है, और ये जो ना, ये जो 9 कषाय हैं, वो अलग है। हास्य, रति, अरति आदि, ये सब कषाय है। हमारे भगवान हसमुख भी नहीं होते, हंसना भी कषाय है, वीतरागी है भगवान। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा माने घृणा करना, ये सब कषाय भाव हैं। इन सब से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। तीव्र कषाय भावों से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। क्रोध आदि कषाय, और इन क्रोध आदि कषायों के अंदर सभी को समान समझना, क्रोध मान माया लोक को, किसी को अच्छा बड़ी कषाय माने, किसी को ज्यादा बड़ी कषाय, किसी को कम कषाय, ऐसा नहीं है। सभी कषायें एक समान है। इसके लिए मैंने जो अभी लोभ की बात कही ना आपसे, उसको पहचाने और फिर निर्णय करें कि हम तीव्र कषायी हैं या मंद कषायी हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत मंद कषायी हैं, दुकान पे बैठते हैं, भाव अपन कुछ नहीं, अपने किसी से कोई लड़ाई झगड़े का काम नहीं है, अपने जो ग्राहक आता है, ग्राहक कैसे अपने उसमें आए, बस अपन तो ये चीज अपने को है, बाकी अपन कोई किसी से बिगड़ने का काम नहीं, लड़ाई झगड़े का काम नहीं, किसी से के साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं, बस अपन तो वो अपने आ जाए अपने उसमें लपेटे में। तीव्र कषाय है कि मंद कषाय है? नाम तीव्र कषाय है। समझ में नहीं आता हमारे को तीव्र कषाय क्या होता है और मंद कषाय क्या होता है, कषाय ही नहीं समझ पाते हैं। विषयों की इच्छा को भी कषाय कहते हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों की जो इच्छा है, भोगने की आकांक्षा है, ये सब कषाय भाव है। सामान्यपने सभी का नाम कषाय है। तो इस तरह से ये चारित्र मोह संबंधी बात हुई। मिथ्यात्व वो दर्शन मोह है, कषाय वो चारित्र मोह है, ठीक है। ये दोनों ही प्रकार का मोह छोड़ देने योग्य है, क्योंकि मोह सभी कर्मों का राजा है। 8 कर्मों का जो राजा है वो है मोह, दर्शन मोह। कई लोग दर्शन मोह की चर्चा करते हुए कहते हैं सब खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक यदि कोई है तो वो है दर्शन मोह। मैं उनसे कहता हूं खतरनाक तो है, लेकिन फिर भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्म के परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं जो सबसे पहले सलटेंगे। दर्शन मोह ये ऐसे हैं जो सबसे पहले मरेंगे। आप इनसे डरो मत ज्यादा, माने आप अपने स्वभाव में जागृत होंगे और ये गए, बस इतनी सी देर है। बाकी के कर्म तो फिर थोड़े लंबे समय तक। अच्छा कौन ज्यादा ताकतवर होता है ये बतलाओ मेरे को, जो ज्यादा लंबे समय तक सामने खड़ा रहे वो दुश्मन ज्यादा ताकतवर है, या जो पहले ही वार में चित्त हो जाए वो ज्यादा ताकतवर है? तो खड़ा रहे वो ताकतवर है, दर्शन मुंह में तो दम ही नहीं है, ये तो पहले ही वार में तीन टुकड़े हो जाएंगे इसके तो। ये दर्शन मोहनी कर्म ये मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं उपशम सम्यक्त्व होते ही, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी है, तीन टुकड़े हो जाते हैं तुरंत। किसने किए वो तीन टुकड़े? स्वभाव के अवलंबन मात्र से, कर्मों के टुकड़े करने के लिए, कर्मों का अभाव करने के लिए, कर्मों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जो अपने स्वभाव की तरफ देखते हैं उनके कर्मों का अपने आप अभाव हो जाता है, ये कर्म अपने आप छूट जाते हैं। इतना सरल मार्ग है, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, अपने को देखो बस। हम तो ये कहते हैं भगवान को भी देखने के लिए आता है, तो भगवान को भी देखने की जरूरत नहीं है, उनको देखना अपने आप को देखने के लिए। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, प्रतिबिंब है वो तो हमारा। भगवान को देखने से हमें अपना स्वरूप ख्याल में आता है, इसलिए हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है। उनको देखते हैं और अपने स्वभाव को देखने की भावना जागृत होती है, हो गया काम, यही तो करना है, इससे ज्यादा और क्या करना है। इससे सरल कोई मार्ग नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं यहाँ से आपका घर जाना बहुत कठिन है, आत्मा का अनुभव करना बहुत सरल है, रोटी खाना बहुत मुश्किल काम है, पचाना बहुत मुश्किल काम है, भोजन बनाना बहुत कठिन काम है, गाड़ी चलाना बहुत कठिन काम है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना सबसे सरल है। क्यों नहीं हो रहा है? आवश्यकता ही नहीं है अपने को। अच्छा आपको चाहिए सम्यक दर्शन? क्या करेंगे, अपना तो काम चल रहा है। बोलो, अपना सम्यक दर्शन के बिना ही चलता है तो अपने को सम्यक दर्शन की क्या जरूरत है? हाँ यदि आप अभी और कोई बात कहो तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ जरूरत है या नहीं है। सम्यक दर्शन के बारे में तो बिना विचार किए हुए बोलते हैं हमें जरूरत नहीं है। कोई और जरूरतमंद आपको मिलता हो तो आप उसको दे देना सम्यक दर्शन, हमें तो नहीं है जरूरत। अरे वाह, क्या कहे तुम जो, हाँ दुख जो है ना वो सम्यक दर्शन नहीं होने का दुख है। आपको किस चीज का दुख है, किस चीज की तकलीफ है, इस बात की खबर नहीं है अभी। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्यात्व जिसको एक शब्द में कहें हम, ये असली दुख का कारण है, मिथ्यात्व, और कोई दुख का कारण नहीं है। जैसे आप आंखों से दिखाई नहीं देता आजकल, मैं तो बहुत परेशान हो गया इनकी वजह से। आप किस लिए दुखी है? आंखें ठीक नहीं होने की वजह से। आजकल पंडित जी इतनी तकलीफ है ना, उठा बैठा नहीं जाता है, इसमें इतना घुटनों में दर्द है, सीढ़ियां नहीं उतर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, नीचे बैठ नहीं पाते हैं, अब मंदिर तक आना, गाड़ी में बैठना तक दुर्भर हो गया है हमारे, इतनी तकलीफ है। कहीं से दुखी? घुटनों में दर्द से, शरीर से, शरीर से दुखी है। कैसे दुखी होता है ये जीव? अभी न तो हम दुख समझते हैं, न सुख समझते हैं, न हमारे को दुख के कारणों की खबर है। हमें तो ये लगता है कि बस यही दुख के कारण है, ये पैसा नहीं है, ये नहीं है, ये हो गया, मोबाइल चला गया, ये टूट गया, टीवी खराब हो गई, नेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क चला गया, बस ये हमारे को दुख का कारण लगता है। ये हमारे को परेशानी लग रही है, पीड़ा दिख रही है, हमारे को लगता है ना, हमारे कष्ट लगता है। हम कहते हैं इसके बिना आप अपना जीवन बिता करके देखें आपको कैसा लगता है, एक दिन बिता के देखो आप इसके बिना। मैं कहता हूं कई बार आज के जमाने में उपवास आदि की व्याख्याएं बदल जानी चाहिए। ये रोटी से दूर रहकर के, भोजन से दूर रहकर के कहता है कि मेरा उपवास हो गया। हम कहते हैं उपवास माने टीवी नहीं, लाइट नहीं, मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, इंटरनेट नहीं। ऐसा उपवास करके तो देखो एक दिन, तो पता लगे हम कितना उसके प्रति आसक्ति है हमारे मन में। ऐसा लगने लग गया इसके बिना तो कुछ लाइफ ही नहीं बची है हमारी, बिल्कुल खाली खाली सा लगने लग गया है हमारे को। एक दिन यदि मोबाइल साथ में नहीं हो तो अधूरापन लगता है हमारे को, ऐसा लगता है जैसे हमारे लाइफ किसी ने ले ली हो। बिना मोबाइल के जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं हम, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारे को लगता है कि जीवन कैसे चलेगा, क्यों नहीं चलता था जीवन पहले? आज के 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था, बताओ मेरे को। इंटरनेट तो नहीं था 50 साल पहले, 100 साल पहले लाइट तो नहीं थी 100 साल पहले, फिर टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लैपटॉप नहीं थे, ये व्हाट्सएप और फेसबुक तो अभी और नए आ गए हैं। पता है एक मैसेज आया मेरे पास में, उसमें लिखा था ऐसा कि यदि आप फेसबुक और व्हाट्सएप से पैसा कमाने का तरीका, आप कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पता है उसमें क्या लिखा था, व्हाट्सएप और फेसबुक को काम में लेना बंद करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। कितना टाइम खाता है, कितना उपयोग खाता है, कितना समय बर्बाद होता है उसमें, कितना टाइम वेस्ट करते हैं हम, लगे रहते हैं उसी उसमें वो कुछ कुछ नहीं, इधर का उधर, उधर का उधर, उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसका गया गया, उसके क्या लेना देना है उसमें, घंटों बीत जाते हैं उसमें निकाल देते हैं हम, और हमें अपने स्वरूप को जानने समझने की सुध बुध नहीं है। कहाँ खो गए हैं हम, किस जगह उलझ गए हैं हम, फंस करके रह गए हैं, सच में इस दुनियादारी में फंस गए हैं, राग रंग में फंस गए हैं, विषय कषायों में उलझ गए हैं हम। इसलिए दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये दोनों ही कषायें, कषाय और मिथ्यात्व जो कि मोहनीय है, ये त्याग करने की बात करें। मिथ्यात्व तुम्हारे दुख का असली कारण है भाई साहब, ये दुख का कारण नहीं है। मैं कहा ना कि एक दिन ऐसा उपवास करके देखो, हम तो बहुत परेशान हो गए साहब आज तो, ऐसा उपवास तो भैया कान पकड़ते हम, भूखे रहने की बात कहो तो हम रह सकते हैं क्या, भूखे रह सकते हैं, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, 3 दिन रोटी नहीं दो तो चलेगा, लेकिन टीवी नहीं हो तो नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं हो तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलता तुम्हारा उसके बिना, उसके बिना दुख लगता है। अरे तुम समझे ही नहीं अभी, दुख का कारण वो नहीं है, दुख का कारण मोबाइल का अभाव नहीं है, दुख का कारण टीवी का अभाव नहीं है, दुख का कारण उसमें सुख मानना है। तुम्हें अपनी उल्टी मान्यता से ऐसे लगता है कि इसमें सुख है, ये जो मान्यता है ना, ये मान्यता उल्टी मान्यता, इस मान्यता की वजह से आप दुखी है, आपको लगता है कि अभाव है इसलिए आप दुखी है। सुधार लो अपनी मान्यता, इनके संयोग से मैं सुखी नहीं होता, इनके चले जाने से मैं दुखी नहीं होता, कोई दुखी नहीं कर सकता हमारे को, संयोग का वियोग हमारे को दुखी करने में समर्थ नहीं है, परिस्थितियां हमारे को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं है, हमने हमारा सुख दुख का कंट्रोल मोबाइल को दे रखा है कि देख भैया मोबाइल तू बराबर चलता रहेगा तो मैं सुखी, तू नहीं चलेगा तो मैं दुखी, क्यों मेरे सुख दुख का कंट्रोल इसके पास में, मेरे सुख दुख का कंट्रोल इसके पास में, मेरे सुख दुख का कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के पास में, देखो भैया तुम मेरे से प्यार से बात करोगे तो मैं बहुत खुश रहूंगा, और तुम मेरे से बिगड़ करके बात करते हो ना, तुम मेरे को डांट देते हो तो फिर मैं दुखी हो जाता हूँ, तो मेरा सुखी होना और दुखी होना सामने वाले के प्रसन्नता से बोलने और दुखी होकर के बोलने पर निर्भर करता है, मैं सुखी दुखी दूसरे के ऊपर, मेरा सुख दुख किसी दूसरे के अधीन नहीं है, मेरा सुख दुख का कंट्रोल मेरे पास में है, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सुखी दुखी कर सके ऐसा नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे गाली देवे इसलिए मैं दुखी हुआ ऐसा नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे इसलिए मैं सुखी हुआ ऐसा नहीं है, दूसरे की प्रशंसा से सुखी तो दूसरे की गाली से दुखी, बहुत बड़ी मिथ्या मान्यता है। आप किससे दुखी हैं और किससे सुखी हैं, मिथ्या दर्शन एकमात्र दुख का कारण है, ये उल्टी मान्यता एकमात्र दुख का कारण है, ये समझ में आनी चाहिए हमारे को बात। एक बार एक बालक, छोटा बच्चा था, 6-7 साल का होगा, और अपने मदर के साथ में कहीं जा रहा था रास्ते में, रास्ते में जाते जाते उसने कुछ लोगों, एक व्यक्ति को देखा यहाँ तो नहीं, अमेरिका की बात नहीं है, इंडिया की बात है, क्योंकि यहाँ तो भिखारी होते ही कहाँ है। लेकिन वहां उसने एक गरीब व्यक्ति को देखा, फटे कपड़े पहन रखे थे, बहुत बीमार था, एक हाथ नहीं था, चला नहीं जाता था, सब भयंकर रोग हो रहा था, हाथ में कटोरा था, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, आंख से आंसू बह रहे थे और भीख मांग रहा था। उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये दुखी क्यों है, बोलो क्या जवाब देगी माँ। मैं आपसे पूछता हूँ, वो बच्चा आपका था, आप उसकी माँ हैं और आप उसे साथ में लेकर के जा रहे थे, बतलाओ क्या जवाब देंगे आप। संदेश भाई क्या जवाब देंगे, बोलो। वो इसलिए दुखी है कि हाथ में कटोरा है, वो इसलिए दुखी है कि फटे कपड़े पहने हैं, वो इसलिए दुखी है कि भोजन नहीं है, इसीलिए दुखी है। एक जवाब और हो सकता है पढ़ने लिखने वालों का, स्वाध्याय करने वालों का, कि साहब बेटा वो पाप कर्म के कारण दुखी है, पाप के उदय से दुखी है, इसके पाप कर्म का उदय है इसलिए ये दुखी है। क्यों, ऐसा ही है ना। महेंद्र भाई ली हिल रही है, कदम ला रहे हैं, नहीं, पाप कर्म का उदय किसी को दुखी नहीं कर सकता। दिनेश भाई पाप कर्म का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है, पाप कर्म का उदय परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है। क्या पाप कर्म का उदय दुखी नहीं कर सकता आपको, पाप कर्म के उदय से प्रतिकूलताएं आ सकती है, पाप कर्म के उदय से अनुकूल संयोग जा सकते हैं, प्रतिकूल संयोग मिल सकते हैं, संयोगों में ऊपर नीचे हो सकता है, पाप कर्म के उदय में शरीर में विकृति आ सकती है, पाप कर्म के उदय में भोजन की व्यवस्था नहीं हो, पाप कर्म के उदय में कपड़े नहीं हो, शाम को भोजन ना मिले, ये पाप कर्म के उदय में हो सकता है। लेकिन वो पाप कर्म का उदय इन संयोगों और परिस्थितियों के बावजूद भी दुखी करने में समर्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलो आप क्यों नहीं है, क्योंकि ये जीव पाप कर्म के उदय से दुखी नहीं होता, मिथ्या मान्यता से दुखी होता है। किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है तो दुखी कि नहीं, लेकिन यदि उसकी मान्यता ऐसी है कि पैसा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो दुखी है, तो अपनी उल्टी मान्यता से दुखी है। पैसा नहीं होने से दुख होता हो तो त्याग करने वाले संयम से रहने वाले मुनिराजों को कितना दुख होना चाहिए, सोचिए आप। हाँ, राजकुमार मुनिराज माथे पे छिगड़ी जला दी, बहुत मुनिराज है इस तरह के, जो भी मुनि बनते हैं, जो भी साधु होते हैं, जितने तीर्थंकर हुए हैं, जितने उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, उन साधुओं को जरा देखिए आप क्या किया उन्होंने, त्याग कुछ नहीं था, फिर भी दुखी है या सुखी। अब कहते बिना मोबाइल के दुखी, क्या बात कर रहे हो आप, हंस रहे हैं आप लोग, बोलो बिना मोबाइल के सुखी कैसे होंगे। अरे मोबाइल में सुख बुद्धि टूटने पर सुखी होते हैं, संयोगों से सुख बुद्धि टूटे उनमें सुख बुद्धि ये मिथ्यात्व और उससे सुख बुद्धि का टूटना ये सम्यक्त्व। आप हमारी क्या बात करें, वैमानिक देव, विमानवासी देव, दौलत राम जी छेड़ावा में उन लोगों के बारे में कहते हैं, जो विमानवासी हूँ थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। वैमानिक देव, रिद्धियां भोग सामग्रियां खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ऐसी ऐसी रिद्धियां अनेक रूप बना सकते हैं, आकाश मार्ग में गमन कर सकते हैं, देवांगनाओं समरमण करते हैं, खूब भोग विलास वैभव की कमी नहीं है, पंचेंद्रियों के विषय भोग है, धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, रिद्धियों की कमी नहीं है, शरीर में बीमारियां नहीं है, सब तरह के विषय भोग सुख सामग्रियां उपलब्ध है, उसके बावजूद भी कहते हैं दुखी है। क्यों, कुछ कमी है कि क्या कमी है, सामने दर्शन दिन दुख पाए गजब दुख होता होगा, कैसा दुख है ये बोलो, आपको लगता है ऐसा समय दर्शन बिन दुख पाए, रोटी बिन दुख पाए, कपड़ा बिन दुख पाए, एसी बिन दुख पाए, गाड़ी मोबाइल बिन दुख पाए, फिर समझ में आता है हमारे को इसके बिना हम दुखी हैं, ये बात तो हमारे को समझ में आती है। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, हम इस वजह से दुखी हैं, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात गले नहीं उतरती, क्योंकि मूल चीज है हम लोग सच में सही समझ नहीं होने की वजह से दुखी हैं। हम उन परिस्थितियों को ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, हम उन संयोगों को ढंग से समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमें पता नहीं हम क्यों दुखी हो रहे हैं। बताओ आप, हमारे दुख का असली कारण मिथ्या दर्शन है, उसका अभाव करने का प्रयास करें, अवर्णवाद से बचें, केवली श्रोत संग धर्म देव अवर्णवादो तो दर्शन मोह से कषाय उदयात तीव्र परिणाम चारित्र मोह से। दर्शन मोह और चारित्र मोह, सर्व प्रकार के मोह का त्याग किया, सब प्रकार का मोह छूट गया, ज्ञानी हो गया, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। तो कितने कर्म हुए अभी तक यहाँ अपने, ज्ञानावरण दर्शनावरण और मोहनीय। घातीय कर्मों में एक और कर्म आता है, जिस कर्म का नाम है अंतराय। कैसा कर्म है ये? विचित्र प्रकार का है। आपको लगता है हमारा ये काम होना था और इस काम के होने में ये टांग अड़ाता है, ये काम नहीं होने देता। आपको लगता है ऐसा? हमारे को लोगों से बहुत शिकायत रहती है, हमारा काम नहीं होता है तो शिकायत ही रहती है, ये काम को अटकाने का काम बहुत अटकाते हैं, तभी ये हमारी फाइल को आगे नहीं बढ़ने देते, ये हमारा ये काम नहीं होने देते, ये जब तक रहेंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता था। कोई कहते हैं साहब जब तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक काम नहीं हो सकता, कोई कहेंगे साहब ये जब तक ऐसा है तब तक ये काम नहीं हो सकता, बच्चे कहते हैं जब तक हमारे ये दादाजी बैठे हैं ना तब तक तो हम ये मकान को ऐसा रिनोवेट करवा ही नहीं सकते, ये इनके रहते तो कुछ नहीं हो सकता। कितनी शिकायत रहती है हमारे को, हम कभी किसी को बच्चों से शिकायत रहती है, किसी को पिताजी से शिकायत रहती है, किसी को दादाजी से शिकायत रहती है, किसी को अपने भाई साहब से शिकायत रहेगी, किसी को मंदिर वालों से, किसी को कमेटी वालों से, किसी को समाज वालों से। क्यों? ये हमारे काम में अड़चन उत्पन्न करते हैं। तुम्हारा काम क्या है भैया जिसमें अड़चन उत्पन्न कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं तुम्हारा जो कुछ भी काम है, जो तुम चाहते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारे मन में आती है, उस काम में बाधा उत्पन्न करने वाला दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। एक भी व्यक्ति तुम्हारे काम में बाधा नहीं डाल सकता। क्या बात कर रहे हो सर? आप रहोगे मेरे साथ में, कोई व्यक्ति बीच में कंप्लेंट नहीं करेगा, डिस्टर्ब। अरे भाई हम नहीं, हम ये कह रहे तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता यदि तुम्हारा अंतराय कर्म का उदय बराबर हो तो। अंतराय कर्म किसका नाम? अंतराय कर्म किसे कहते हैं? शास्त्रों में लिखा, उमा स्वामी आचार्य ने मूल सूत्र में लिखा, विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न करे उसे अंतराय कहते हैं, बाधा डाले उसे अंतराय कहते हैं, बाधक बने होते हुआ काम बिगड़ जाए। आपको ऐसा लगा काम तो होने वाला था। देखो कोई व्यक्ति आया हमारे यहाँ और दुकान पर आया बिजनेस में, और हमारे यहाँ बैठ करके उसने काफी बातें की, दो घंटे तक उससे हमारी कोई डीलिंग फाइनल होने वाली थी, डिस्कशन होता रहा और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अभी 2 करोड़ की डीलिंग अपनी फाइनल हो जाएगी 2 महीने के अंदर अंदर, बस इससे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। वो वहां से निकल करके गया, जब दुकान से बाहर निकल करके गया तो वो मिला हमारी बगल वाले दुकान वाले से 2 मिनट के लिए, कोई जानकार होगा, 2 मिनट बोलता हुआ वो, हम अंदर बैठे बैठे देख रहे हैं कि बाहर ग्लास में से दिख रहा है कि वो उससे बात कर रहा है, चले गया। हम तो ये मान करके बैठे थे कि हमारा काम होगा। अब जब हमने उसको कॉल किया तो उसने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो जो 2 करोड़ की डीलिंग होने वाली थी ना, मानो वो अटक गई, कैंसिल हो गई। तो हमें क्या लगता है, और अपने यहाँ तो बैठा था ना 2 घंटे, तब तो सब बराबर था, लगता है ये निकल करके जब उससे मिला ना तो उसने कुछ ना कुछ जरूर टांग अड़ा दी होगी। तो बहुत बदमाश है वो व्यक्ति। अरे कौन क्या करे, अंतराय कर्म का उदय तेरा है, अंदर में अपना अंतराय कर्म का उदय होता है, अंदर में अपना पाप कर्म का उदय होता है, तो काम में बाधा आती है, होता हुआ काम बिगड़ जाता है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, चलते हुए काम में बाधा आ जाती है, होते होते एकदम जो काम होने वाला था, नजदीक था, पांच भेद कहे हैं इसके अंतराय कर्म के, दान अंतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन पांचों में बाधा उत्पन्न होना वो अंतराय, अंतर आय। अंतर माने ये हमारी इच्छा और काम, इच्छा थी किसी काम को करने की और काम, इच्छा और काम दोनों का मिलाप हो जाए तो काम हो गया। अब इच्छा थी और कार्य के बीच में पड़ गया गैप और काम नहीं हुआ तो अंतर आ गया। कि किस वजह से आया ये अंतर, कि जिस वजह से अंतर आया है उसे कहते हैं अंतराय कर्म, ये कहलाता है अंतराय। दान देना चाहे और दान नहीं दे पाए, बोलो, भोगना चाहे और भोग नहीं पाए। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है, आप यहाँ से पूछ करके समय शिखर जी जाते हैं कि वहाँ जाएंगे और $1,000 देकर के आएंगे, $500 देके आएंगे, और आप वहाँ गए और पूरी वंदना की और लौट करके वापस आ गए, जब वापस फ्लाइट में या ट्रेन में बैठे थे तो आपको लगा अरे यार मैं देना तो भूल ही गया। आसान नहीं है दान अंतराय कर्म का उदय। दान देना चाहो लेकिन आप दे नहीं सकते हो, योग्य पात्र नहीं मिलेगा आपको। महेंद्र भाई आप दान देना चाहो और सामने से मना कर दे कि जरूरत नहीं है, होता है ना? दान अंतराय कर्म का उदय। देना चाहो और दे नहीं पाओ, आपका तो बहुत मन था कहीं दान देने का, किसी को कुछ देने का, आप दे ही नहीं पाए, मौका ही नहीं लगा, आपके हाथ से मौका निकल गया, दूसरे व्यक्ति को मौका मिल गया। आपका तो बहुत मन था किसी व्यक्ति को कोई किताब चाहिए थी और हमारा मन था कि हम अपने पैसे से ला करके दे दें, आप देते उससे पहले ही किसी और ने ला करके दे दी, आपके दान अंतराय कर्म का हो जाए, आप नहीं दे पाए। बाधक है कारण, क्यों बंधा था ये कर्म? दूसरे के काम में हम बाधक बने तो हमारे ये बाधक कर्म बंधा। देखो पहले तो उदय समझो और फिर उदय समझने के बाद में बंधा क्यों था वो समझो और फिर जिस वजह से बंधता है उस वजह से दूर होने का प्रयास करो। कितना सिंपल है मार्ग। उदय समझना इसलिए जरूरी है कि उदय नहीं समझेंगे तो हमारे को समझ में नहीं आएगा कि इसका इससे होता क्या है। फिर उदय समझ लिया तो डरने लगे, अरे यार ये काम तो इस वजह से हो रहा है क्या, अंतराय कर्म के उदय से होता है, खतरनाक है भैया अंतराय कर्म का उदय। तो क्या करना, मत बांधो अंतराय कर्म। तो कैसे बंधता है उन कारणों की चर्चा कर लो। तो जैसे बंधता है वो काम नहीं करा, अंतराय कर्म नहीं बांधा, अंतराय कर्म नवीन अंतराय कर्म नहीं बंधा तो उदय नहीं आएगा, उदय नहीं आएगा तो बाधा ही नहीं होगी। बहुत प्रसंग बनते हैं ऐसे अंतराय कर्म के उदय में। अपन अंतराय कर्म का स्वरूप यदि समझ में आ जाए तो दूसरे लोगों के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निकल जाए। अंतराय कर्म का स्वरूप नहीं समझता इसलिए दूसरों पर दोषारोपण करता है, लेकिन ये अंतराय कर्म का सहारा लेकर के बहाने मत बनाना। देखो बहुत लोग मिलते हैं, देखो क्या होता है, हर व्यक्ति के बहाने अपने अपने लेवल के होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रवचन में बैठे बैठे किसी को नींद आ रही थी तो हमने कहा देखो नींद आ रही है आपको, क्या करें पंडित जी दर्शनावरणी कर्म का उदय है। दशावली कर्म का हो जाए। हमने कहा आजकल आप स्वाध्याय में नहीं आते। अरे पंडित जी क्या बतलाए, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। अरे वाह, अंतराय कर्म के उदय का बहाना बनाता है, स्वाध्याय में आता नहीं है, अपना दोष अंतराय कर्म के माथे पे डालता है। अरे यदि इसको हमने हमारी स्वच्छंदता के पोषण में काम ले लिया तो समझ लीजिए नवीन कर्म का आश्रम रुकने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप बचना चाहते हैं अंतराय कर्म से, वास्तव में यदि आप सीरियसली बचना चाहते हैं, इन कर्मों का फल यदि हमारे को भुगतना अच्छा नहीं लगता है, हमारे को हृदय से ऐसा लगता है कि यार वास्तव में ये कर्म अच्छे नहीं है, सच में बाधा तो अपने को ही हो रही है ना, तकलीफ तो हमारे को ही हो रही है। जीवन भर कमाते रहे, इसलिए कमाते रहे कि अंत में सुख शांति से बैठ करके खाएंगे। अब जिंदगी भर जिसके लिए कमाते रहे, अब न पेट में आंखें काम करती है न मुख में दांत काम करते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है, मूंग की दाल का पानी पीता है, डायबिटीज हो गई है, मीठा खा नहीं सकता है, हार्ट पेशेंट है, घी खा नहीं सकता है, हलवा खा नहीं सकता है, कुछ खाता है तो पचता नहीं है, क्या करें बोलो, काहे के लिए कर रहे थे। ये अंतराय कर्म बांधा था इसलिए हो रहा है भाई साहब। ऐसा अंतराय कर्म का उदय होता है कि आपका मन पसंद भोजन बनाने के लिए आप एक महीने से प्रयासरत थे, भोजन के लिए मान लीजिए, पार्टी के लिए मान लीजिए, भोजन तो कह सकते हैं आप रोजाना बनता है, महीने महीने भर से आपकी प्लानिंग चल रही थी किसी पार्टी के लिए और आप उसके बारे में मुंह धोके बैठे थे, मानिए आप ताक लगा के बैठे थे कि पार्टी में बहुत मजे करेंगे, और जिस दिन वो समय आया उस दिन आपकी तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि आप उस दिन कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ बिस्तरों पर ही रहे, और जब पार्टी खत्म हो गई फिर उसके बाद में अब उठे खड़े हो गए स्वस्थ। ये क्या हुआ? वो जो काम हो रहा था ना, वो काम आपके होने का योग नहीं था। क्यों नहीं था वो काम होने का योग? अंतराय कर्म। अरे ये ऐसा कर्म है होते हुए काम को बिगाड़ दे, भोजन करने के लिए बैठे और भोजन नहीं कर पाए, टीवी देखने के लिए बैठे और लाइट चले जाए। माने मोबाइल मिलाना चाहें आप, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये अंतराय कर्म की वजह से होते हैं काम। अभी मैं यदि पहले ये कहता आपसे कि अंतराय कर्म नहीं बांधना चाहिए, अंतराय कर्म अच्छा कर्म नहीं है, तो हाँ होगा कुछ भी अपने को का लेना देना, और जब कहते हैं कि आपका ये सिग्नल नहीं मिल रहा है ना, ये परेशानी हो रही है, ये अंतराय कर्म है, बात करने में बाधा। अब वैसा अंतराय कर्म आपने बांधा होगा, किसी व्यक्ति को बात नहीं करने दिया होगा, किसी व्यक्ति को बात करने में बाधा पहुंचाई होगी, किसी को देखने में पीड़ा पहुंचाई होगी, किसी के लाभ होने में हमने बीच में टांग अड़ा दी होगी, किसी को खाना खाते हुए को रोक लिया होगा, टोका होगा, कोई आम का रस पीड़ा था, हमने कहा यार रहने दे यार, क्या तबियत, मतलब किसी को खाने नहीं देना, किसी को खाने के लिए रोकना, कि भोगांतराय कर्म बांध रहे हैं हम। ऐसे उपभोग अंतराय कर्म, खाने में बाधा उपभोग अंतराय कर्म, भोगने में बाधा उपभोग अंतराय कर्म, भोग और उपभोग ये दोनों अलग अलग कर्म हैं। वन टाइम यूज में आने वाली जो भी चीज है वो कहलाती है भोग, और जिसको बार बार में प्रयोग में लिया जाए वो कहलाती है उपभोग। जैसे खाने की चीज है, यूज एंड थ्रो जो भी चीजें होगी समझिए, वन टाइम हमने प्रयोग किया और फिर खत्म, उसमें बाधा आवे वो भोग अंतराय है। और आप समझिए सोना चाहते थे, बहुत तेज नींद आ रही थी, दोपहर का समय था, 3 बजे का समय, और आपको बहुत तेज नींद आ रही है, और आप सोना चाह रहे हैं और कोई मेहमान आकर के बैठ गए, अब क्या करें बोलो, आप नहीं सो पाते, क्या करें, मजबूरी है। तो ये जितनी इस तरह की मजबूरियां बनेगी, बाधक कारण जितने दिखाई देंगे, उन सब के पीछे कौन कारण है? अरे वाह, हमारा तो दिन खराब कर दिया, दिन में ये समय मिला था उनको आने के लिए, तो कोई तो व्यक्ति आया है दूर से है? और हमारे को ऐसे लगता है कि ये कोई समय है आने का, उनको आने से पहले सोचना चाहिए था, दोपहर का समय है, खाना खाकर के व्यक्ति आराम तो करता ही है, अभी कोई बतला रहे थे, अभी बात चल रही थी, हम लोग भोजन कर रहे थे तब, राजकोट में दुकानें दिन में बंद रहती है, अब 12 से 4 बजे तक दुकान बंद रखते हैं राजकोट में। अब 12 बजने में 2 मिनट पर कोई ग्राहक आकर के खड़ा हो गया, दुकानदार ऐसे देखता है कि ये समय तेरे आने का, मैं दुकान का शटर डाउन कर रहा हूँ तो आकर के बैठा है, यहाँ खड़ा हुआ है। आपके भोग में बाधा, आपके उपभोग में बाधा। आप हलवा पूरी खाना चाहते हैं और फीवर हो गया, अब कुछ नहीं हुआ जी, अभी हुआ और सिर्फ 2 घंटे के लिए गर्म था और भोजन का टाइम निकल गया और बुखार निकल गया। कैसा होता है, हम कोई चीज खाना चाहते हैं, बाटी बनाई है, हम खाना चाहते हैं और दांत में दर्द हो गया, हम नहीं खा पा रहे, दस्त लग गए, हम नहीं खा पा रहे, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय। हम सोना चाहते हैं, सो नहीं पाए, बिस्तर नहीं, एसी खराब हो गया, मच्छर हैं, आराम में तकलीफ, जो भी उसमें व्यवधान होंगे, अंतराय कर्म। कुछ उदाहरण दिए मैंने, आप चाहे जितना लगा सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, जहाँ जहाँ आपका जो कुछ भी काम अटकता हुआ दिखाई दे रहे, समझ लीजिए उसमें कारण है अंतराय कर्म। पड़ोसी कारण नहीं है, पत्नी कारण नहीं है, आप सोना चाहते हैं और घर में बच्चे इतनी खटपट कर रहे हैं कि आपको सोने नहीं दे रहे हैं, आप बच्चों को बुरा भला कहते हैं, अरे बच्चों का क्या दोष, अंतराय कर्म तुम्हारा। हमारे अंतराय कर्म का उदय होता है तो बच्चे बदमाशी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, सोने नहीं देते हैं, खटपट करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, और हमारे अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो वही बच्चे चुपचाप शांति से बैठ करके वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, सो जाते हैं। ऐसा होता है, दूसरे के कारण नहीं, वो तकलीफ नहीं दे रहा है, वो तकलीफ में निमित्त बनेगा, कब निमित्त बनेगा, आपका उदय खराब होगा तो। मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने पर, जल से गलता रवि से जलता कमल जगह छूट जाने पर, मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने पर। जो आपको मित्र दिखाई दे रहे हैं शत्रु हो जाते हैं, जो शत्रु होते हैं वे मित्र हो जाते हैं। देखो रामचंद्र जी सीता के लिए 6 महीने तक रावण की सेना से युद्ध करते रहे, अपनी थी ना, कितना राग था उसके प्रति, और फिर घर लाए फिर क्या किया, जंगल में छुड़वा दिया विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना के, गर्भवती अवस्था में, किसी से कोई सुना नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ पूछताछ नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, किसी ने कहा और बस उसने चुपचाप कृतांत वक्र को बुलाया कि भैया इसको कहो कि तीर्थ यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर ले जा करके जंगल में छोड़ आना इसको। ऐसा करता है कोई किसी के साथ, पाप कर्म का उदय। रावण उठा करके ले गया, पाप कर्म का उदय था सीता का। अग्नि परीक्षा हुई, देवों ने अग्नि का जल कर दिया, पुष्प वृष्टि करने लग गए। कुछ सीता भी कदाचित उन देवों से पूछती, रहने दो रहने दो, बड़े आयो पुष्प वृष्टि करने वाले, जब रावण ले गया तो तब क्या सो रहे थे, जब जंगल में छुड़वाया था उस समय नहीं आ सकते थे मेरा सहयोग करने के लिए, क्या करे, पाप कर्म का उदय आता है तो कोई कुछ नहीं करता है भैया। ऋषभ देव स्वामी के जब अंतराय कर्म का उदय आया तो आहार की विधि नहीं जानता था कोई देने वाला, 6-7 महीने तक रोजाना आहारचर्या के लिए चलते थे, कोई विधि नहीं जानता है। 6 महीने तक तो उठे नहीं, ध्यान अवस्था में बैठे रहे, और 7 महीने और कुछ दिन रोजाना डेली उठते हैं ध्यान से, नगर में जाते हैं, अयोध्या नगरी के अंदर इधर उधर गलियों में चक्कर लगा करके वापस लौट करके आते हैं, कोई आहार देने वाला नहीं मिलता। दूसरे दिन फिर उठ करके जाते हैं, कोई आहार देने वाला नहीं है। तीसरे दिन फिर उठ करके गए, कोई आहारचर्या नहीं, कुछ नहीं, कोई जानता नहीं, कोई विधि नहीं जानता, कोई देने वाला नहीं, वापस लौट करके आ गए। ये कैसे क्यों हो रहा है, गर्भ में आए थे ना उसके 6 महीने पहले से देव लोग रत्नों की बरसात कर रहे थे। ऋषभ देव की बात करता हूं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से देव लोग रत्नों की बरसात कर रहे थे। 15 महीने तक निरंतर रत्नों की बरसात होती रही। गर्भ कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आए, चारों प्रकार के देव देवियां। जन्म कल्याणक मनाने के लिए सुमेरु पर्वत पर ले गए, 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया गया। दीक्षा ली थी, अभी तो कुछ दिन हुए, 6 महीने भी नहीं बीते। दीक्षा ली उस समय दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आए और वो राजा से, वहां के दूसरे नागरिकों से, नाभी राय और जो लोग वहां मौजूद थे, उन लोगों से विवाद करने लगे पालकी उठाने के लिए। वे देव लोग आज कहां चले गए जब इनको आहार की विधि नहीं मिल रही है। तो पाप कर्म का उदय आता है अंतराय, उसका नाम है भोगांतराय। ऋषभ देव के कौन से कर्म का उदय था? भोग अंतराय कर्म का उदय, जिसके कारण आहार की विधि नहीं मिल रही है। लेकिन वो भोगांतराय कर्म का उदय दुखी करने में समर्थ नहीं है, ये बात समझ लेना। दुखी करने में समर्थ तो मिथ्यात्व अंतराय कर्म का उदय नहीं। अंतराय कर्म के उदय से आपको नींद आ रही थी, नहीं सो पाए, नहीं सोने दिया किसी ने। अंतराय कर्म के उदय से काम होने वाला था और नहीं हो पाया। अंतराय कर्म के उदय से ऐसा हुआ, आपको गले में माला डालने वाली थी, सम्मान होने वाला था, सम्मान समारोह के लिए आपको इन्विटेशन दिया गया था, और फिर बाद में मालूम चला कि किसी का दोबारा लौट करके फोन ही नहीं आया। आप घर में मुतरते रह गए कि भैया दोबारा आएगा, बुलाएंगे, लेने आएंगे, फिर आए नहीं लेने के लिए। अंतराय कर्म का उदय ये दुखी होने का कारण नहीं है, मिथ्या दर्शन दुख का कारण है। आठों ही कर्मों में उल्टी मान्यता दुख का कारण है, लेकिन अंतराय कर्म का उदय था। पता है वो अंतराय कर्म किसका था? उनके पिताजी ने बांधा होगा अंतराय कर्म। किसने बांधा था? खुद ही बांधता है। किसका कर्म कौन भोगे? किसी दूसरे का फल कोई दूसरे को थोड़ी ना मिलता है, खुद ने ही बांधा था। आपको ये तो पता ही होगा कि ऋषभ देव स्वामी जब राजा थे, तीसरे काल का अंतिम समय था, भोग भूमि का काल समाप्त होने लगा था, कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे थे, तो ऋषभ देव स्वामी ने असि मसि कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य, इन 6 प्रकार की बातों का ज्ञान प्रजा को सिखाया था। समझे ना आप? 6 बातें सिखाई थी उन्होंने, खेती करना भी सिखाया था उन्होंने। ऋषभ देव ने सिखाया कि भाई वृक्ष नहीं है, आप इस तरह से खेती करो, धान्य की प्राप्ति होगी। खेती करने लगे लोग, उन्होंने सिखाया कि ऐसे करो, ऐसे बीज बो, ऐसे फसल उगेगी, ऐसे हल चलाओ, ऐसे उसमें बीज डालो, सब पानी दो, कई महीनों के अंदर फसल तैयार हो गई। अब फसल तैयार हो गई तो उन्होंने कहा इसको क्या करें? तो एक एक उस फसल के दाने में, उसमें से एक एक में से गेहूं निकालना, एक एक दाना गेहूं का, और ये अलग करना, इसको घास फूस को अलग करना, धान्य अलग करना और भूसा अलग करना, ये बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने कहा जिस बैलों वगैरह को आपने जोत रखा था उनको चलाओ इनके ऊपर, तो वो कर देंगे, उनके चलने से वो धान्य अलग हो जाएगा, छिलका अलग हो जाएगा। तो चले गए साहब, वे करना शुरू किया। लेकिन वो करते क्या, वो ऐसा करते उससे पहले वो बैल ही खा जाते थे। ऋषभदेव जी दौड़े दौड़े फिर गए, प्रभु आपने जो उपाय बतलाया था वो तो बैल ही खा जाते हैं सब। तो ऋषभदेव ने कहा बैल खा जाते हैं तो एक काम करो, वो नहीं खाए इसके लिए उनके मुंह के ऊपर छीका बांध दो। ठीक है, उन्होंने जाकर के बांध दिया, कुछ नहीं खाया उन्होंने, बंद हो गया मुंह, कुछ नहीं खा सके, काम हो गया बहुत अच्छा। अब वो शाम को खड़ा किया उनको, बांध दिया बैलों को, और उनको खाने के लिए चारा रखा, तो कुछ खाया ही नहीं। फिर दौड़े दौड़े गए कि लगता है उनकी तबीयत खराब हो गई, वो तो कुछ खाते ही नहीं है, रात भर से कुछ नहीं खाया उन्होंने, तो इतना टाइम हो गया, बोले कुछ नहीं खाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुमने वो छीका हटाया था कि नहीं मुंह से? बोले वो तो नहीं हटाया था। तो कैसे खाते? सर बहुत भोले थे, नहीं ना समझते, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्या करना है कैसे करना है। फिर उन्होंने जाकर के वो मुख से छीका हटाया, उसमें 13 घंटे 8 मिनट का काल लग गया। जिस समय बांधा था ना, उस समय से लेकर के जब खोला तब तक में उन बैलों को भोजन में 13 घंटे कुछ मिनट का अंतराय पड़ा, जिसके फल में ऋषभ देव स्वामी को 13 महीने 8 दिन तक भोजन नहीं मिला। बोलो आप कैसा कर्म बंधता है। हम बातें करते हैं, हम किसी के लिए इतना सा किया हमने बाधा, और इतनी बाधा बड़ी बनकर के सामने आई, 13 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली। लेकिन बात बताऊं आपको एक और मार्मिक बात इसमें, भले ही ऋषभ देव को रोजाना आहार की विधि नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी आहार नहीं मिलने से दुखी नहीं थे। माने देखो, जन्म से मति विश्रुत और अवधि ज्ञान के धारी थे, पता है 3 ज्ञान के धारी थे महेंद्र भाई, और दीक्षा लेती मने पर यह ज्ञान भी हो गया था, 4 ज्ञान के धारी हो गए। और अवधि ज्ञान तो इतना चमत्कारी ज्ञान होता है मुकुंद भाई, बैठे बैठे पता लगा ले कौन सी तारीख को आहार होना है। अच्छा वैशाख शुक्ल तीज को अक्षय तृतीया के दिन होगा, कहाँ होगा, राजा श्रेयांक के यहाँ। यार रोज रोज चक्कर काहे को लगाएं, उसी दिन चलेंगे ना। बोलो हो सकता है कि नहीं ऐसा। लेकिन फिर भी 4-4 ज्ञान के धारी होते हुए भी दिनेश भाई उन्होंने भोजन के लिए आहार के लिए रोजाना चक्कर लगाना स्वीकार किया, लेकिन आहार जैसी हीन चीज के लिए अवधि ज्ञान का प्रयोग करना उनको बर्दाश्त नहीं था। बोलो क्या आहार के लिए विकल्प आया है, आहार के लिए चले गए नहीं मिला लौट करके आ गए, विकल्प तो टूट गया ना। अज्ञानी को लगता है कितना सिंपल मेथड था यार, इतने महीनों लगा दिए, रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, रोज जा रहे हैं वहाँ नहीं मिल रहा है, फिर लौट करके आ रहे हैं, एक बार देख लो ना आप तो क्यों चक्कर लगा रहे हो। अच्छा बताओ किसी दुकान पर आप जाओ और वो दुकान बंद मिले, वापस लौट करके आ जाओ, फिर दूसरे दिन जाओ फिर बंद मिले, लौट के आ जाओ, तीसरे दिन जाओ फिर दुकान बंद मिले, फिर लौट करके आ जाओ, और जबकि आपके पास में उस दुकान वाले का नंबर है मोबाइल नंबर, तो फिर आप रोजाना उसकी दुकान पे चक्कर लगाओगे। अरे 1-2 दिन लगा लिए तब तक तो ठीक है, कौन मूर्ख होगा जो 7 महीने तक चक्कर लगाएगा। आप सिंपल मेथड नहीं अपनाएंगे महेंद्र भाई, तो मैं रोजाना जाता हूँ पता नहीं दुकान क्यों नहीं खोल रहा है, तो एक काम करते मोबाइल मिला के देखो ना भैया क्यों नहीं आ रहे हो, कब कब खोलोगे ये बता दो, उसी दिन जाएंगे। पता लग जाता कि वैशाख शुक्ल तीज के दिन अक्षय तृतीया के दिन इनकी दुकान खुलेगी, और इस दुकान में उस दिन हमारे को गन्ने का रस का हार मिलेगा, 21 रस का हार मिलेगा, और वहां मिलेगा तो दूसरे बाजारों में गलियों में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उनके यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं, अंतराय कर्म का उदय था, उस अंतराय कर्म को भोगने का उनके योग था, तो रोजाना उनको जाना भी पड़ा, रोज जाकर के आते थे, नहीं मिली तो नहीं मिली विधि। ये ऐसा कर्म है, किसी को नहीं छोड़ते कर्म, उदय आता है तो भुगतना ही पड़ता है। अरे साहब बहुत खतरनाक है ये कर्म तो। हाँ लेकिन एक बात है, आप ऐसा सोच रहे हो यार मैंने तो उसके काम के अंदर बहुत परेशानी की थी, अब मेरे को भी भुगतना पड़ेगा, क्या करूं मैं। हो सकता है ना ऐसा, कभी कभी हो जाता है ऐसा, हमने न मालूम किस किस के काम में कितनी बाधाएं पहुंचाई है, अपने साथ भी ऐसा होगा। कहते तुम चिंता मत करो, अपने वर्तमान परिणामों को संभालो, आपके वर्तमान परिणाम उस कर्म को बदल देंगे, उसको आकर्षित कर देंगे, चेंज हो जाएगा उसमें। हमने यहाँ परिणाम किए और कर्म बंध गया, और हमारे परिणाम बदले और कर्म बदल गया। मुझे याद आता है एक सेठ का प्रसंग, एक सेठ का है भी 8 मिनट है 7 मिनट है, ना मेरे पास भी घड़ी चलती है। देखिए वो जो सेठ था, तो सेठ का स्वर्गवास हो गया, चंदन की लकड़ियों का व्यापार था, उसका बेटा चंदन की लकड़ियों का व्यापार करने लगा, और बहुत व्यापार को उसने बहुत बढ़ाया, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार हो गया, और लोग तो उसको उस गांव में चंदन सेठ के नाम से पुकारने लगे, चंदन की लकड़ियों का व्यापार था। एक बार व्यापार उसका बहुत अच्छा चलता था, बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत धनवान हो गया। वहां से राजा की सवारी निकली, गांव में राजा निकले अपने रथ में बैठ करके, उनकी सवारी निकल रही थी। तो ऐसा सिस्टम होता था कि गांव में राजा आए तो चारों तरफ लोग उनके दर्शनों के लिए दौड़ते दौड़ते आते। हमारे यहाँ तो भी होता है ऐसा, अभी भी होता है वर्तमान में भी, समझ लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनकी कोई सवारी निकल रही हुई है, कुछ हो रहा हो तो पब्लिक जाती है, चारों तरफ भीड़ लगती है, तो सब उनके दर्शनों के लिए, उनकी जय हो जय जयकार करने के लिए राजा जी आए हैं, और सब माहौल चल रहा था। और सेठ था, ये सेठ अपने घर की छत पर खड़ा था, अपने टेरिस में खड़ा था, बाहर था, मान लीजिए बालकनी में था। बालकनी से उसने राजा को देखा, ऊपर से राजा को नमस्कार किया, राजा ने उसको देखा। सेठ के मन में एक भाव आ गया। क्या भाव आया? यार ये जो राजा है, यदि यहाँ से गुजर रहा है, अभी यदि इसका स्वर्गवास हो जाए गांव में, भाव है, यदि इसका यहाँ गांव में स्वर्गवास हो जाए तो चंदन की लकड़ियों में तो जलाएंगे इसको। तो अपना जो स्टॉक रखा है यहाँ, ऑफ सीजन जो चल रहा है और जो डेड स्टॉक पड़ा है, ये अच्छे दामों में लकड़ियां निकल जाएगी। भावों को कौन रोक सकता है? मन में ऐसा भाव आ गया। अगर राजा के मन में, उसके मन में ऐसा भाव आया ना, तो बात निकल गई। अब राजा के मन में भी एक भाव आ गया। क्या भाव आ गया? उसने बराबर में खड़े हुए मंत्री के कान में कहा कि मंत्री जी, ये जो सेठ है ना जो ऊपर है, इसको कल सुबह 8 बजे बुला के फांसी पे चढ़ा दो। महाराज क्या कह रहे हो? कह दिया ना तुम्हारे को, बस फिर क्या हुआ? क्या भाव आ गया राजा के मन में? क्यों आ गया ऐसा भाव? उसके मन में आया कि सेठ समझता क्या है अपने आप को, मैं आया हूँ यहाँ इनके गांव में, सारी दुनिया सारी प्रजा मेरे दर्शनों के लिए यहाँ आई है, और ये ऊपर से नमस्कार करता है मेरे को, बहुत घमंड हो गया है इसको, कल बुला के इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। देखो आप, सेठ को पता ही नहीं है, उसने तो इतना सा विचार किया था कि यदि मर जाए तो मेरा स्टॉक निकल जाए, इसमें तो राजा ने फैसला सुना दिया, इसको तो फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ऐसे कर्म बांध लेते हैं हम लोग, पता भी नहीं लगता है, अपने आप हो जाता है। रात गई, बात गई, राजा चले गया, बात खत्म हो गई, सवारी निकल गई। रात को सेठ विचार कर रहा था, सो रहा था, और सोते सोते उसको मन में विचार आने लगा, अरे यार राजा के बारे में ऐसा सोचा मैंने, गलत बात है, आज मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके बारे में ऐसा सोचता कि ये मर जाए और इनके चंदन की लकड़ियों में जलाए? कितनी गलत सोच है। आखिर राजा भी तो पिता जैसे ही होते हैं ना, प्रजा के पालक होते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। रात को स्वभाव इस तरह का उसके मन में ऐसा विचार करने लगा। सुबह मंत्री ने राजा से कहा कि राजन सेठ को बुलाएं फांसी के लिए, तो राजा ने कहा नहीं नहीं रहने दो, सेठ साहूकारों से ही तो अपने नगर की शोभा है। और इतनी सी बात के लिए उसको फांसी पे चढ़ा देना कहां तक उचित है कि वो नीचे नहीं उतरा था। पता नहीं क्या परिस्थिति रही हो, क्यों नहीं आ पाया हो, घुटने दर्द कर रहे हो, घर में कोई बीमार हो, छोड़ो कैंसिल करो। अच्छा अब सेठ से पूछो कि तुम्हारे को फांसी की सजा? नहीं नहीं कुछ नहीं। राजा से पूछो कि तुम्हारे मरने के लिए? कुछ नहीं। न राजा को सेठ के बारे में कुछ पता है, न सेठ को राजा के बारे में कुछ पता है। अरे परिणाम अपने इधर होते हैं, उन परिणामों से कैसे कर्म बंध जाते हैं और कैसे परिणाम बदलते हैं, उनसे कर्म कैसे बदल जाते हैं, इसका हमें कुछ अंदाजा नहीं है। परिणामों को संभालो, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपके ये परिणाम किस तरह से अंदर में अपने आप ही सत्ता में पड़े हुए कर्म बदल जाएंगे, संक्रमण हो जाएगा उनका, पूर्व में बांधा हुआ अंतराय कर्म। आप प्रेरित करो लोगों को स्वाध्याय करने के लिए, बहुत बड़ी चीज है, सच कह रहा हूँ आपको। आप लोगों को सुख का मार्ग बतलाओ, आपके सुख के रास्ते खुलते चले जाएंगे। सुखी होने की विधि बतलाओ लोगों को। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, सुनने के लिए कहता हूँ लोगों को। अरे चार लोगों को बताओ, आप सुनने के लिए आने के लिए प्रेरित करो। कहता हूँ आपका जीवन कैसा अपने आप कर्म झड़ते चले जाएंगे, कैसे अंदर में कर्म बदल जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, पाप कर्मों का आकर्षण हो जाएगा, पुण्य कर्म का उत्कर्षण हो जाएगा, अंदर के अंदर दिखता नहीं है, इनविजिबल है, समझ लीजिए आप, दिखेगा नहीं, परिवर्तन हो जाएगा। स्वरूप को जानो, ये कर्म फिलॉसफी बड़ी गजब की है। ऐसे ऊपर ऊपर से काम नहीं चलता है, गहन अध्ययन की अपेक्षाएं रखती है ये सब बातें। आप यदि गहराई से अध्ययन मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो कुछ रहस्य हाथ लगेगा। ये अंतराय कर्म भी हमारा ही बांधा हुआ है, इसलिए किसी को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। ये दर्शन मोह और मिथ्यात्व ये भी हमारा ही अपराध है। समझ में नहीं आना ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय, ये भी हमारा ही अपराध है। गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी है, और हमारी गलती को सुधारने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, हम ही हैं। हम यदि अपनी गलती को सुधारें, अपने परिणामों को सुधारें, अपने आप को जाने पहचाने, हम परमात्मा बन सकते हैं। बोलिए। ये अंतराय कर्म देव है तो नहीं, आप मायाचारी कर रहे हैं। एक घंटा 30 मिनट घड़ी बोल रही है मेरी मंगलाचरण से। हाँ कोई बात नहीं, वीर अंतराय तो साफ साफ है। क्या ताकत की कमी, वीर अंतराय कर्म का उदय। आपने भोजन किया ताकत के लिए और 10 लग गए उससे, कुछ नहीं। बादाम खाया आपने की ताकत आएगी इससे, बादाम खाने से, बादाम का हलवा खाने से आया, लेकिन पचा नहीं पाए। माने ये वीर्यांतराय कर्म का उदय यदि आपका होगा तो ताकत नहीं रहेगी, वीकनेस रहेगी। सब चीजों की ताकत की बात है। अब ये ताकत क्या है? जानने की ताकत, समझने की ताकत, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, चलने की ताकत, बोलने की ताकत, उठने बैठने की ताकत, इन सब चीजों के अंदर जितनी ये शक्ति है वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से है। जितनी शक्ति है वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से है, और जितनी शक्ति की कमी है वो वीर्यांतराय कर्म के उदय से है। मैंने कल परसों की बात कही थी, क्षयोक्षम और उदय, क्षयोक्षम और उदय। उदय तीव्र है माने क्षयोक्षम कम है, क्षयोक्षम तीव्र है उदय कम है। तो वीर्यांतराय कर्म का जब तीव्र उदय होता है तो जीव पुरुषार्थ नहीं कर पाता, मेहनत नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता, काम करने की ताकत नहीं रही। क्यों नहीं रही? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं। आंखों से ज्यादा देर तक देख नहीं पाते आजकल, आजकल हम ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते। क्यों पता नहीं, थकान सी ऐसी लगती है हमारे को, आंखों से देखने में तकलीफ सी होती है। ये चक्षु इंद्रिय संबंधी वीर्यांतराय कर्म का तीव्र उदय है। सब कर्मों में लागू होता है ऐसा, सब इंद्रियों में भी लागू होता है। हाँ बोलिए ना। मतलब लावांतर कितना चर्चा की, लावांतराय तो, लावांतराय में तो भोजन संबंधी चर्चा, किसी भी चीज के भोग संबंधी, लाभ माने प्राप्ति, धन प्राप्ति होनी है, प्रॉफिट होना है कहीं, उसमें अंतराय बाधा उत्पन्न हो गई, ग्राहक आया था आकर के चला गया, ठीक है, वो लाभांतराय कर्म का उदय। किसी भी चीज का जहाँ लाभ होना हो और वो लाभ हमसे दूर हो जाए वो लाभांतराय कर्म के उदय से होता है। बोलिए।
वो
लोग सब लाभांतराय
अंतराय की पूजा करते हैं।
नहीं नहीं,
फायदा होता है?
नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं करते, हम तो भगवान की पूजन करते हैं, कर्मों की पूजा नहीं करते। रुचि कम, वो क्या वास्तव में क्या है, कर्म को क्या दोष देवे, दोष तो अपना है। सच बात तो ये है, मैंने कहा ना अपना, देखो टोडरमल जी ने लिखा एक वाक्य बहुत सुंदर, अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है, जिन मत विषय ऐसी अनिति संभवे नहीं। इसलिए कर्मों की चर्चा हम कितनी भी करें यहाँ, लेकिन स्वभाव सामर्थ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। कितनी भी कर्मों की चर्चा करते रहें, ये कर्म बलवान नहीं है, बलवान तो मैं ही हूँ, कर्मों की ये ताकत नहीं है जो कर्म मुझे संसार में रुला सके। मैं अपने आप को भूलकर, अपनी स्वभाव सामर्थ्य को भूलकर दुखी हो रहा हूँ, अपनी स्वभाव सामर्थ्य को पहचान कर ही मैं सुखी हो सकता हूँ। इस तरह से कर्मों का स्वरूप समझकर, कर्म फिलॉसफी को समझकर, अपने आत्मा का स्वरूप समझने का प्रयास करें, स्वाधीनता को समझने का प्रयास करें, पर कर्तृत्व की विपरीत मान्यता को तोड़कर, अपने आप को जानकर पहचानकर हम सभी सुखी हों, इसी भावना से बात को
समझते।
मेरे